ओम शांति। वरदानी हाथ तुम्हारे, मस्तक पर सदा हमारे। अनुभव करते हैं सभी भगवान सर्वशक्तिवान का वरदानी हाथ हमारे सिर पर सदा ही है। उसने हम सभी को अनेक वरदान दिए हैं। यदि उन वरदानों की स्मृति में हम रहकर चलें, तो वैसा बनना करना बहुत ही सहज और सरल हो जाएगा। वरदानों की स्मृति, पहली बात, क्या क्या वरदान दिए बाबा ने? ऐसा वरदान जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े, शक्ति की अनुभूति हो। याद करो जरा, मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो, और महान आत्मा हो, और कल्प कल्प के विजयी रतन हो। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे महान वरदानों की स्मृति में यदि हम रहकर चलेंगे, तो वैसा बनना करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिनको जीवन में अनेक कार्यों में सफलता पानी है, पुरुषार्थ में आगे जाना है, तो उसके लिए आवश्यकता है ऐसी श्रेष्ठ स्मृतियों का स्वरूप बनकर चलना, और अपने विचारों के लेवल को कभी भी कम नहीं होने देना, सदा ऊंचा बनाकर रखना। क्योंकि बाबा ने कहा है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओ। तो हम देखें, अपने आप को चेक करें, क्या मैंने जो लक्ष्य रखा है, मेरा चिंतन, मेरे विचार वैसे हैं? ठीक है, बाबा के बन के चल रहे हैं, सतयुग में तो चले ही जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सभी जाएंगे। लेकिन पद क्या होगा हमारा? पद का आधार है क्या? पुरुषार्थ। तो क्या हम अपने आप अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं? तभी हम दूसरों को संतुष्ट कर सकेंगे ना। अगर स्वयं ही संतुष्ट नहीं हुए, तो दूसरे भी दूसरों को क्या कर पाएंगे? तो उसके लिए, जैसा कि बताया, कि हमारे विचारों पर हमें बहुत ही अटेंशन देकर चलना है। क्योंकि हम सभी माया के राज्य में रह रहे हैं, चारों तरफ हम सब के माया चक्कर लगा रही है। थोड़ा सा भी अटेंशन हटा, तुरंत अपनी ओर बुद्धि योग ले जाएगी, श्रीमत का उल्लंघन हो जाएगा, नेगेटिव विचार आ जाएंगे, दृष्टि वृत्ति का आकर्षण हो जाएगा, अगर अपने आप पर अटेंशन नहीं है तो। तो विचार कैसे होने चाहिए? स्वमान के शक्तिशाली, शुभ भावना युक्त, पॉजिटिव, पावरफुल। तब जाकर हमने जो लक्ष्य रखा उसे सहज प्राप्त कर सकेंगे, उस मंजिल पर पहुंच सकेंगे। क्योंकि हम अपने विचारों को जितना जितना महान बनाकर चलेंगे, शक्तिशाली बनाकर चलेंगे, तो स्थिति को शक्तिशाली बनाना बहुत ही सहज और सरल हो जाएगा। बाबा के महावाक्य, बच्चे, स्व स्थिति श्रेष्ठ है, तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। तो स्थिति हमारी सदैव कम से कम, ज्यादा जितना भी हो, कम से कम 4 घंटे का योग का चार्ट एक दिन का अवश्य होना चाहिए। 2 घंटा बैठ के, 2 घंटा कर्म करते, तो आप कहीं समस्या परिस्थितियों के लेवल से फिर ऊपर उठ जाएंगे। बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आपकी स्थिति को प्रभावित नहीं करेंगी। एक ऐसा ही लेटेस्ट का प्रैक्टिकल का अनुभव। हम अभी लंदन गए थे, 28 तारीख को ही वापस पहुंचे हैं। तो हमारा वापसी का टिकट था 25 तारीख का, 25 जुलाई का, और हमारे पास कोई मैसेज भी नहीं। तो हम 25 जुलाई को एयरपोर्ट पहुंचे लंदन में, तो वहां जाके पता किया, तो बोल आज जो प्लेन एयर इंडिया का जाने वाला था, वो 24 तारीख को ही चला गया है। क्यों? कई बार शायद उसमें कम होते हैं पैसेंजर, तो दोनों को एक मिला देते हैं, तो पूरा प्लेन कंप्लीट हो जाता, ऐसा होगा शायद। तो अभी क्या करिए, तो बड़ी समस्या हो गई भाई। तो वहां एक जो माता हमको छोड़ने आई थी उसका कोई एयरपोर्ट पर जानता था, तो उस माता ने उसको फोन किया, कोई बड़ा ऑफिसर था वो, भाई हमारे माउंट आबू से दो भाई आए हैं और इनके साथ ऐसे ऐसे हुआ है, इनका आज का टिकट था और वो प्लेन कर ली चला गया है, बोल हमने आपको मैसेज दिया लेकिन हमें मैसेज मिला नहीं, तो कहीं तो मिसिंग हुआ कुछ। तो फिर बोला आप टिकट मेरे पास भेजो, उस ऑफिसर ने कहा। हमने टिकट भेजा तो सारा देख के बताया, बोलो आप वो तो जो गया गया, आप अभी कब जाना चाहते हो। मैंने कहा कल का मिले, एक दो दिन बाद जब का मिले हम रेडी हैं। तो उसने देख के बताया, तो बोल कल का खाली है प्लेन में सीट, तो बोल लेकिन डायरेक्ट प्लेन नहीं है। और इस समय जब ये बातचीत चल रही तो हम वो माता बात कर रही, हम गाड़ी में बैठे बैठे पीछे बाबा को याद कर रहे। मैंने कहा बाबा अब आप देख लेना, कैसे भी करके कुछ भी हो लेकिन हमको जाना है, क्या हो सकता है वो आप देख लेना, हम आपके बच्चों की सेवा में आए हैं। तो ऐसे बाबा को दिल से याद कर रहे हम, और उधर वो माता बात कर रही है, तो बोल डायरेक्ट प्लेन नहीं है लेकिन लंदन से दिल्ली, दिल्ली से अहमदाबाद जाना होगा। इनका ठीक है जैसे मिलता हो करा दो। उसने टिकट करा दिया। तो हम सोच रहे भाई अगर एक दो दिन पहले ही टिकट होता है तो डबल ट्रेवल किराया होता है ना, है? तो पता नहीं कितना होगा। अब मैंने कहा चलो जो भी हो टिकट तो कम से कम मिले। तो फिर टिकट हमारे पास आया और उस माता ने उसको पूछा भाई कितना है इसका, बोल कुछ नहीं उसी टिकट पर इस टिकट का हो गया है। ऐसे होता नहीं है ऐसे होता नहीं है कभी भी, प्लेन निकल गया छुट्टी आपका ओम शांति सब कुछ, लेकिन बाबा की इतनी मदद रही कि उसी टिकट पर वो टिकट हमारा हो गया। लेकिन ये समझो कि आधा घंटे का ही नाटक चला बस, जो कुछ हुआ आधे घंटे में हमने अपने आप को देखा, जरा भी हमारा कोई संकल्प नहीं चला क्या होगा, बाबा बैठा है उसकी सेवा में आए हैं वो सब ठीक कर देगा। तो स्थिति जहां श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां हमारे अनुकूल बन जाती हैं, स्वतः ही बदल जाती हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, कैसी परिस्थिति समस्या आए, लेकिन अपनी स्थिति को कभी भी हलचल में नहीं लाना है, क्या होगा नहीं। भगवान ने हमको ज्ञान दिया, जो होगा अच्छा ही होगा, गलत तो कुछ होने वाला ही नहीं है, और वो हमारे साथ है तो सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब हम जा रहे थे तभी भी 3 तारीख को गए, 3 जुलाई को, तो उस दिन भी जाने से पहले यहाँ कई भाई बहन करे, अरे आप एयर इंडिया से जा रहे हो, उसके कुछ दिन पहले ये एयर इंडिया के प्लेन का क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, तो बोल उसमें नहीं जाओ दूसरे से जाओ, ये है वो है। मैंने कहा भाई सबके साथ थोड़ी ऐसा होने वाला, हर एक के अपने कर्मों का हिसाब किताब है, हैं? और बाबा हमारे साथ है, उसकी सेवा में जा रहे हैं, जो होगा सब ठीक ही होगा। तो हम अहमदाबाद से जब एयरपोर्ट पर जा रहे थे तो बाबा के कमरे में वहां छुट्टी लेने गए सेंटर पर अहमदाबाद में, तो मैंने कहा बाबा ऐसे ऐसे कई भाई बहने बोल रहे हैं तो आप देख लेना क्या हो सकता है, आपके बच्चों की सेवा में जा रहे हैं। तो बाबा ने दृश्य दिखाया, ऐसे बाबा ने हाथ किया और उस हाथ के ऊपर प्लेन आ गया है, और बाबा कह रहा बच्चे इसमें बैठ के आप जा रहे हो, भगवान के हाथ में जो प्लेन है उसमें बैठ के आप यात्रा कर रहे हो, तो क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, कुछ होने वाला ही नहीं, और सब कुछ ठीक ही रहा। तो इसलिए जो आत्माएं उसकी श्रीमत पर उसकी आज्ञा को पालन करके चलते हैं, उसके हर श्रीमत नियम मर्यादा का पालन करके चलते हैं कदम कदम पर, वो भी उनका कहना मानने के लिए बंद जाता है। कई भाई बहने जब अनुभव सुना तो कहते हैं हमने बाबा को बोला, हमारे को तो बाबा ने कोई मदद ही नहीं की, रिस्पॉन्स ही नहीं दिया है। पूछो अपने आप से, जिनके साथ ऐसा होता है तो पूछो अपने आप से कि हम बाबा का कहना कितना मानते हैं, उतना ही बाबा हमारा कहना मानेगा। हम अधिकार तो रखें लेकिन कर्तव्य का पालन करें ही नहीं है। तो जहां पर देखो प्यार वो होता है, प्यार में हम जो बाबा कहे वैसा बन के दिखाएं, करके दिखाएं, उसको कहेंगे सच्चे दिल का प्यार। और प्यार में हम कर्तव्य निभाएं, ऐसा नहीं केवल डिमांड ही करते रहें बाबा ये करो वो करो, नहीं। बाबा की हर श्रीमत नियम मर्यादा की पालना हमारे जीवन में हो, हम उसका कहना मानेंगे तो निश्चित रूप से वो भी हम जो संकल्प करेंगे फिर वही होगा। और बाबा आया ही हमारे लिए है। देखो भक्ति में केवल मीरा का श्री कृष्ण से प्यार था ना, तो प्यार में भी क्या हुआ, उसके लिए जहर भी अमृत बन गया है। तो वहां तो केवल भावना थी ना, ज्ञान तो नहीं था ना, श्री कृष्ण के प्रति मीरा की अटूट भावना थी, श्रद्धा थी। तो भक्तों के लिए जब भगवान इतनी मदद करने के लिए हाजिर हो जाता है तो हम तो उसके बच्चे हैं, क्या नहीं कर सकता हमारे लिए। तो हम ऐसी अपना ऐसा हमारा दिल का प्यार हो, उसे ऐसी लगन हो, सच्चे दिल का प्यार। तो जहां प्यार है तो वहां निश्चित रूप से जो आप संकल्प करेंगे वही होगा। हम एक बार बताएं, हमने एक प्यार में हम कर्तव्य निभाएं। तो एक बार हम कहीं जा रहे थे भट्टी कराने की सेवा में, तो 10 दिन पहले प्रोग्राम फाइनल हुआ। 10 दिन पहले तो रिजर्वेशन क्या मिलेगा है? तो हमने रिजर्वेशन वाले भाई को कहा, मैंने कहा भाई कुछ हो सकता है रिजर्वेशन का? तो उसने भी कहा भाई सब 4 महीने पहले हो जाता है, 10 दिन पहले क्या मिलेगा। मैंने कहा तत्काल में ट्राई करो। बोल तत्काल की मैं गारंटी नहीं ले सकता, मैं ट्राई करूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप उधर ट्राई करो, हम बाबा से ट्राई करते हैं। तो हम बाबा के कमरे में गए और मैंने बाबा को याद कर कहा बाबा अब कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, ये प्रोग्राम दादियों की राय से ही बना है और मुझे जाना है सेवा पर और आपने रिजर्वेशन करवाना है। ऐसे अधिकार के रूप में बाबा को दिल से याद कर कहा। 10 मिनट योग करने के बाद हमारे सामने लिखित आ जाती है कि रिजर्वेशन हो गया है, S3 में 26 नंबर सीट है। अगले दिन उस भाई को पूछा तो उसने भी यही कहा कि रिजर्वेशन हो गया है, S3 में 26 नंबर सीट। ये है प्यार और अधिकार की बात। ऐसा हमारा बाबा से अटूट प्यार हो तो फिर आप जो संकल्प करेंगे वही होगा। और प्यार का भी आधार कि बताया जो अपने विचारों के लेवल को बनाए रखे हैं, श्रेष्ठ महान पॉजिटिव पावरफुल शक्तिशाली। क्योंकि जिस संसार में आप रह रहे हैं वहां नेगेटिव विचारों का फोर्स ज्यादा है। देखो यहां आप आए हैं सारे दिन सुबह से शाम तक ज्ञान योग की बातें मनन चिंतन अभ्यास करके चलते हैं, तो कितना अच्छा अनुभव हो रहा है, कैसी स्थिति बन गई, कोई पूछे बस बात नहीं पूछा उड़ रहे हैं, हो रहा है ना अनुभव है? पहली बार ही आए हैं ना नासिक वाले हैं भट्टी में है? तो अनुभव हो रहा है ना ऐसा है? कैसे, उसका आधार बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे पहले जो अभी बताया विचार संकल्प, वो हमारे पॉजिटिव पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, महान हैं, स्वमान के हैं, शुभ भावना युक्त हैं। तो वहां पर मेहनत नहीं लगती है, सहज ही आप फिर जो संकल्प करेंगे सब कुछ सहज सरल हो जाता है और अनुभव करना सहज और सरल हो जाता है। तो प्यार हमारा कैसे बढ़ेगा टूट हम, ताकि पुरुषार्थ भी सहज हो जाए, तो उसके लिए 3 अभ्यास रोजाना की दिनचर्या में करके चले। इस भट्टी को भी सफल बनाने के लिए अभी से ये अभ्यास शुरू कर दो आप। पहला अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। यही 50 से ज्यादा लोग बैठे हैं, अभी से देखना शुरू करो, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, कम से कम 50, ज्यादा आप जितनों को भी देख सकते। क्या होगा इससे, हमारी आंखें जो कुछ देख रही हैं मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनेगी, वैसे विचार बनेंगे और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाएगी। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि भी कहा जाता है। तो मूल आधार हुआ दृष्टि, यदि हम दृष्टि को आत्मिक बना ले, रूहानी बना ले, दिव्य बना ले, तो फिर संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगेगी। और सब बात की बात है, लेकिन सबसे पहला नजर का, दृष्टि का प्रभाव पड़ता है हमारी स्थिति पर। तो शुरू कर दें अभी से। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 5, 10, 15 मिनट के बाद, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बिंदु बन जाओ, निराकारी बन जाओ, अशरीरी बन जाओ। क्या होगा इससे? जैसे हम अशरीरी बनते हैं तो आत्मा स्वतः इस देह और देह की दुनिया के सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त होकर उस सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे आ जाती है। और जिनके ऊपर सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया हो, उसका संसार में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बाबा आपको अमौत के मुंह से भी निकाल कर बाहर ले आएगा। बाबा के ये भी महावाक्य हैं, बच्चे यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास विद अनर बनाएगा, और यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेफ्टी का भी साधन बनेगा। क्या? अशरीरी बनने की प्रति। इसलिए इस अभ्यास में हम अपने आप को परफेक्ट बनाएं, जब चाहें जहां चाहें सेकंड में अशरीरी बिंदु बन जाओ। तभी 2 मिनट के लिए सभी हैं, जैसे कि ऐसा अनुभव करना है कि शरीर मेरा खत्म हो गया है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और केवल मैं आत्मा रह गई हूं, और परम धाम में महाज्योति शिव बाबा के स्वरूप पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर दो। तो ये भी एक योग की सहज विधि है, क्योंकि जब तक हम इस देह और देह की दुनिया से पूरी तरह डिटैच नहीं होते हैं, अशरीरी नहीं बनते हैं, तब तक बाबा से पूरी तरह अटैच नहीं हो सकते, जुड़ नहीं पाएंगे। तो अगर बाबा से एक बार जुड़ गए तो परम धाम में देखो, परम धाम गोल्डन रेड लाइट के प्रकाश में महाज्योति शिव बाबा चमक रहा है, उसको देखते रहो है? तो देखते देखते उसके ऊपर मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगा, और उसकी वो पावर शक्तियां गुण विशेषताएं महानताएं हमारे जीवन में आने लगे। क्योंकि जहां हमारा मन होता है उसकी वैसी शक्ति वो पावर हमें अनुभव होने लगती है। अब आप याद करो कोई ऐसी घटना को जिससे आपका बहुत दुख मिला हो, बहुत दर्दनाक सीन को, तो वैसी अनुभूति होने लगी। और कभी याद करो आप ऐसे जीवन की वो ऐसी घटना को जिससे आपको बहुत ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हुई, तो क्या होगा? फिर वैसी अनुभूति होने लगी। कोई बहुत बड़ी ऐसे दृश्य जिससे देखकर आपको बड़ी खुशी हुई हो जीवन में, तो फिर उसको देखकर इमर्ज करने से ही वो खुशी नशा जीवन में इमर्ज रूप होने लगी। तो ऐसे याद करो, बाबा के बनने के बाद बाबा ने हमको क्या क्या दिया, क्या क्या प्राप्तियां कराई, क्या क्या श्रेष्ठ भाग्य दिया, हम क्या थे, क्या बन गए और क्या बना रहा है। सोचिए, जिनको आप अपना समझते थे हैं, लौकिक वालों को जिनको अपना समझते थे वो पराये हो गए, और जो पराये थे वो अपने हो गए हैं। आज जो भी बाबा के बच्चे बने, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में कहीं बैज वाला बाबा का बच्चा मिल जाए, दिखाई दे, तो कितनी खुशी होती है। तो भगवान ने हमें अपना बनाकर बेहद ईश्वरीय परिवार के अधिकारी बना दिया। तो ऐसे महान प्राप्तियों को, कुछ ऐसी जीवन के दृश्य घटनाओं को है जिनसे जीवन में खुशी नशा शक्ति आए, पावर आए, ऐसी बातों को याद करो तो मन उसके प्यार में मगन हो जाएगा। और अमृत वेले आंख खुलते ही जो बताया कि महान स्मृतियों का स्वरूप बन जाए, कोई न कोई समान इमर्ज कर लो, और ऐसा समान जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े, शक्ति की अनुभूति हो और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करो। तो समान से क्या होगा, हमारे विचार महान बनते हैं, और जहां विचार महान है तो स्थिति को महान श्रेष्ठ योग युक्त बनाना सहज और सरल हो जाएगा। स्वमान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है, दूसरों से भी सम्मान मिलता है। इतनी ऊंची महान है वो स्वमान की सीट। स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कैसे भी अभिमानी आत्मा के अभिमान को खत्म किया जा सकता है। जो कार्य आप मुख के बोल से नहीं कर पाते वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। अपने शारीरिक कर्म भोग पर भी विजयी बन सकते हैं, इतनी बड़ी शक्तियां। एक ऐसा ही अनुभव, हम कहीं जा रहे थे तो पहले भी सुनाया मैंने, तो कहीं जा रहे थे तो सीट के नीचे सामान रखे ट्रेन में, तो कुछ ऐसी नुकीली चीज थी, उंगली को लग गई और आधा इंच उंगली कट गई और ट्रेन तो चल पड़ी। ट्रेन में तो कोई दवाई गोली की बात नहीं है, तो हम सीट के ऊपर बैठ गए और यही उंगली थी, इस उंगली के ऊपर ऐसे दूसरी उंगली रख ली, और ये स्वमान का अभ्यास करते योग के पावरफुल वाइब्रेशन दिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियों के पावरफुल वाइब्रेशन लेके इस उंगली के ऊपर डाल रहा हूं, इससे इसका खून निकलना बंद हो जाए, दर्द बंद हो जाए। ऐसे दृष्टि देते 25 बार संकल्प किया और उसके बाद उंगली हटा ली, खून निकलना बंद, दर्द भी काफी कम हो गया और 15-20 मिनट के अंदर बिना किसी दवाई गोली के सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो आप सब ज्ञान योग करते तो हैं, लेकिन अब समय आया है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसका प्रयोग कर विजयी बनने का। हम कितने महान हैं, हम कितने शक्तिशाली हैं, हमारे जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्णता की मंजिल के समीप पहुंच रहे हैं, हमारे एक एक संकल्प में सिद्ध होने की पावर आती जा रही है, वैसा बनने करने की शक्ति आती जा रही है। इसलिए हम अपनी संकल्प शक्ति के महत्व को जाने पहचाने और उसको नेगेटिव होने से बचाएं, पॉजिटिव पावरफुल बनाकर चलेंगे तो फिर आप जो सोचेंगे वही होगा। इतने महान हैं हम, तो अपनी वैल्यू को समझें और उसको अपने विचारों को उतनी वैल्यू दें, वेस्ट होने से बचाएं, पॉजिटिव पावरफुल बना के चलें। बी के ज्यादा बाबा के बच्चे जो भी हैं उनमें काफी भाई बहनों को विटामिन B12 की कमी रहती है। आप में से कोई हैं ऐसे, उठा रहे हैं 5-6 लोग हैं, 10-12 ने उठाया अभी तक तो क्यों, क्योंकि वो ज्यादातर मिलता है मांसाहार में और वो हम खाते नहीं, इसलिए उसकी कमी होती है, तो फिर इंजेक्शन या दवाइयां लेनी पड़ती हैं। मुझे भी विटामिन B12 की कमी थी, हर सप्ताह एक इंजेक्शन लेना पड़ता था। तो एक दिन मैं बाबा को योग में बैठा बैठा याद कर रहा था, तो मैंने बाबा को कहा, बाबा ये विटामिन B12 का इंजेक्शन मैं कब तक लेता रहूंगा, आप सुप्रीम सर्जन हो तो आप इसका कुछ इलाज करो। ऐसे बाबा को दिल से याद कर कहा। तो बाबा से टचिंग मिली, बच्चे योग का प्रयोग करो, तो हमने योग का प्रयोग करना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान सुप्रीम सर्जन बाबा से, ये डॉक्टर सर्जन के संबंध की बात है ना, तो सुप्रीम सर्जन बाबा से विटामिन B12 के पावरफुल वाइब्रेशन मुझ आत्मा में आ रहे हैं और मुझ आत्मा से निकलकर सारे शरीर में फैल रहे हैं, जिनसे मेरी विटामिन B12 की कमी पूरी होती जा रही है। ऐसे योग में हमने अभ्यास करना शुरू किया, 5 दिन, कभी सप्ताह भर भी, कभी 3 दिन, ऐसे जब स्मृति आए तब। ऐसे करते करते अभी भी करता हूं मैं वो अभ्यास, वो इंजेक्शन लिए आज साल भर से ऊपर होने को आया है, अभी तक तो उसकी कोई कमी नहीं लग रही है और ना ही आगे लगेगी, और एक मैंने पहले अपने हेल्थ की फुल चेकिंग कराई, उसमें विटामिन B12 नॉर्मल निकला है। तो आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं जिनको भी कमी हो तो है। इसलिए हमने बताया कि अभी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम ज्ञान और योग का प्रयोग करें विजयी बने, क्योंकि दवाई गोली ना शुरू में थी ना अंत में होंगी, योग बल ही काम आना है। ये मोबाइल भी सब खत्म हो जाएगा है, ये मन का मोबाइल, बाबा के साथ जिनका अच्छा कनेक्शन है, क्लियर कनेक्शन है, उसको कब कहां क्या करना है, उसकी सही समय पर सही टचिंग होगी, वैसा करने में आप सफल होते रहेंगे। तो इसलिए आवश्यकता है सदैव बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रख के चलने की। अगर लाइन क्लियर है तो सही समय पर आपको सही टचिंग मिलेगी और वैसा करने में सफल हो सकेंगे। तो लाइन क्लियर कैसे रहेगी, तभी चाहते हैं ना भाई बाबा के साथ निरंतर लाइन क्लियर रहे तो पावर आती रहेगी और सही समय पर हर बात की सही टचिंग मिलती रहेगी। तो लाइन क्लियर रखने के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन दो बातें मुख्य हैं। क्या दो बातें? एक तो अब वापस घर जाने का समय आया है, इसलिए सब प्रकार के विस्तार को समेट कर सार स्वरूप बन जाओ, क्योंकि बुद्धि में बहुत सारी बातें होंगी तो बाबा के साथ कनेक्शन जुट नहीं पाएगा। ये भी करना है, वहां जाना है, ये करना है, और उसी बुद्धि को बाबा में लगाना, तो थोड़ा इधर थोड़ा उधर बट गई तो उतना बाबा से कमी हो गई। इसलिए अब वापस घर जाना है तो सबसे बुद्धि योग निकाल कर एक बाबा में लगाओ, सार स्वरूप बन जाओ, तो बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी। दूसरा, बुद्धि की लाइन क्लियर रखने के लिए बुद्धि का स्वच्छ और पवित्र होना बहुत जरूरी है। अगर बुद्धि स्वच्छ पवित्र है तो ऐसी स्वच्छ बर्तन है उसमें कोई भी, देखो आप पानी भरो कोई चीज गिर जाए तो क्या होगा, स्पष्ट दिखाई देगा ना वो चीज, ऐसे ही हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर एकदम स्वच्छ है बुद्धि तो बाबा की याद स्वतः ही आएगी है, सही समय पर सही टच मिलेगी। तो उसके लिए बुद्धि का स्वच्छ और पवित्र होना बहुत जरूरी है। तो हम सब पवित्र तो बने हैं, लेकिन उसमें संपूर्णता आ जाए उसमें हर एक नंबर वार है। तो क्या है पवित्रता की संपूर्णता, उसके लिए अव्यक्त बाप दादा ने मुरलियों में 7 बातें बताई है। उन 7 बातों को हम अपने सामने रखते हुए हरेक अपने आप को चेक कर ले कि मैंने अपने आप को पवित्रता में कितना संपूर्ण बनाया है, और जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी उतना उतना बाबा के साथ बुद्धि की लाइन स्वतः ही क्लियर रहेगी। और जहां लाइन क्लियर है तो कब कहां क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में आप सफल हो सकेंगे। तो कहीं भी फिर रुकना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा। क्या है वो 7 बातें? संपूर्ण पवित्रता का पहला स्वरूप है स्वच्छता। खाने की, रहने की, विचारों की, कपड़ों की, स्थान की, सब प्रकार की स्वच्छता है तो उससे बुद्धि की लाइन को, पवित्रता को, पवित्रता में संपूर्णता लाने के लिए सहज हो जाएगा। बुद्धि की पवित्रता को बढ़ाने में आपको सहयोग मिलेगा। दूसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का मन वचन कर्म से ब्रह्माचारी बनना। मन वचन कर्म से ब्रह्माचारी बनना अर्थात तो मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ ब्रह्मा बाप ने किया है उस सभी को कदम कदम पर फॉलो करके चलने वाली आत्मा को ब्रह्माचारी कहा जाता है। तो वो भी हर एक चेक कर ले है? उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। तीसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का एक व्रता। एक व्रता अर्थात एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी धारणा हमने कहां तक बनाई है अपनी, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। चौथा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का, बाबा ने कहा अमृत वेले से रात्रि तक, एक साकार मुरली ये बात कही बाबा ने, अमृत वेले से रात्रि तक सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हो, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। पांचवा स्वरूप संपूर्ण पवित्रता का, बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, इसलिए उससे भी मुक्त बनो, सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का ही स्वरूप बनकर चले, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र। छठा स्वरूप संपूर्ण पवित्रता का, बावन का संपूर्ण निर्विकारिता, अर्थात किसी भी विकार का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो। एक मुरली में बावन ने कहा कि मोटे मोटे पांच विकारों को तो सब बच्चों ने जीत लिया है, लेकिन उनके जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं ना, उनको अभी तक कईयों ने अपने पास संभाल के रखा हुआ है। तो क्या है बाल बच्चे? सबको अनुभव है ना, ईर्ष्या द्वेष घृणा जेलसी नफरत सुस्ती आलस सलबेलापन पर चिंतन नेगेटिव चिंता, माना जो भी नेगेटिव बातें हैं उनमें से यदि एक भी हमारे अंदर है तो वो भी अपवित्रता की लिस्ट में गिनी जाएगी। तो किसी भी विकार का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो और सातवीं बात, बावन का संकल्प अथवा स्वपन में भी, संकल्प अथवा स्वपन में भी कोई भी अपवित्र संकल्प बुद्धि को टच ना करे, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र। तो इन सातों बातों को सामने रखते हुए हरेक अपने आप को चेक कर ले कि मैंने अपने आप को पवित्रता में कितना संपूर्ण बनाया है, और जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी उतना उतना बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रहने लगेगी, और जहां लाइन क्लियर है तो कब कहां क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में सफल होते रहेंगे। तो कहीं भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा क्या करें कैसे करें, जिस समय जो टचिंग मिली वैसा करने में सफल होते रहे, वही टचिंग मिलेगी जिसमें कि आपका सफलता मिलनी। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, एक बार हम नेपाल जा रहे थे भट्टी कराने की सेवा, तो नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर उधर अंदर अपना सेंटर था और इधर इंडिया बॉर्डर के भी 4 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर था, बीच में दोनों देशों का बॉर्डर था, बाई रोड जाना था हमको। तो हम इंडिया बॉर्डर पार करके जैसे ही नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे तो वहां उस दिन कुछ मिलिट्री वालों का आपस में झगड़ा हो गया था, तो बॉर्डर बिल्कुल बंद किया हुआ था, ना किसी को जाने दे रहे थे ना आने दे रहे थे। तो हम भी पहुंचे तो हमारे को बोला कि वापस जाओ, हम नहीं जाने दें। ये तो बड़ी समस्या हो गई। वहां नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर जो अपना सेंटर है वहां भट्टी रखी है, 250-300 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, और ये मिलिट्री वाले कहते हैं कि हमने बॉर्डर बंद किया, वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। तो एक बड़ी समस्या हो गई ना। तो अभी क्या करें जी? तो हमने वहां से थोड़ा सा अलग होकर हटके और बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ा और बाबा को सारी समस्या बताई। बाबा अभी हम नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे हैं और यहां से 4 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर है, वहां पर भट्टी रखी है, 250-300 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, और ये मिलिट्री वाले कहते हैं कि हमने बॉर्डर बंद किया हुआ है, वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। तो अब मुझे क्या करना है वो आप ही बताओ, हम वही करेंगे। ऐसे बाबा को दिल से याद कर कहा। 10 मिनट योग करने के बाद, 5 मिनट योग करने के बाद बाबा से टचिंग मिली। बच्चे इन मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर साइड को बैठा हुआ है, तो उससे जाके बात करो। तो देखा तो मैंने कहा कोई बैठा तो है। तो एक और भी भाई थे हमारे साथ, तो उस भाई को हमने बोला कि भाई मैंने कहा ये मिलिट्री वालों का देखो बड़ा ऑफिसर कोई साइड को बैठा हुआ है, तो उससे चल के बात करो। तो गए, दोनों को सफेद कपड़े बैज लगा हुआ था। तो उस भाई ने कहा साहब हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए हैं और ये भाई हमारे माउंट आबू हेडक्वार्टर से आए हैं और हमारा यहाँ नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर अपना हमारा सेंटर है और वहां पर इनके लिए बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, 250-300 लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, तो हमको नेपाल के अंदर जाना है। अच्छा अच्छा ब्रह्म कुमारी आश्रम से आए हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, फिर तो जाइए। तो जो दो मिनट के पहले ना हो गई, दो मिनट के बाद हाँ हो गई। कैसे हाँ हो गई? बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर थी तो सही समय पर सही टचिंग को कैच किया और वैसा करने में सफल हो गए। एक और अनुभव, ये एक बार कोविड के समय की बात है, हम ऑनलाइन क्लास करा रहे थे कहीं, तो ओम शांति वन में लाइब्रेरी में, वहां मुझे पता नहीं था वहां सिग्नल, मोबाइल सिग्नल कम पकड़ता है, तो हमने ज्वाइन कर लिया, क्लास शुरू किया, बात होने लगी, दो मिनट लाइन चली और कट गई, फिर दोबारा ज्वाइन किया, फिर दो मिनट बात हुई, फिर लाइन कट गई। तब मैंने बाबा को याद कर कहा, बाबा अब देखो सब लोग देख रहे हैं, बार बार लाइन कट रही है, मैंने कहा ये ठीक नहीं है, अब कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, जब तक हम क्लास पूरा नहीं करें तब तक लाइन कटनी नहीं चाहिए। ऐसे बाबा को अधिकार के रूप में दिल से याद कर कहा, और फिर पूरा पौना घंटा क्लास कराई, एक बार भी लाइन नहीं कटी, और जैसे ही क्लास पूरा किया ओम शांति कहा तो टावर भी ओम शांति हो गया। तो अगर हमारी उसके साथ बुद्धि की लाइन क्लियर है तो ये फाइनल बात है, दुनिया की सभी लाइन आपके लिए क्लियर ही मिलेंगी निश्चित रूप से। इसलिए अब समय ऐसा आ रहा है, आगे आने वाले समय को देखते हुए उसके साथ बुद्धि की लाइन क्लियर रख के चलना बहुत बहुत जरूरी है। एक और भी अनुभव याद आया, थे बहुत अनुभव। तो एक बार पटना गए थे, हैं तो एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर जा रहे थे, उस समय इलेक्शन था वहां, अभी भी इलेक्शन है, तो वो गाड़ियों को रोक के चेक कर करके भेज रहे थे, तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी, तो भाई ने हमारी गाड़ी भी लाइन में खड़ी कर दी, तो हमने उसको बोला, मैंने कहा भाई हमको ऐसे ही देरी हो रही है, क्लास का टाइम हो रहा है, तो आप लाइन में खड़ी नहीं करो, आप जिधर से गाड़ियां आ रही है ना उधर से चलो। बोल भाई सब आगे पुलिस वाले हैं, वो रोकेंगे। मैंने कहा हम किसकी सेवा में जा रहे हैं, कौन हमारे साथ है, आप चलो तो सही, देखा जाएगा जो होगा, भगवान हमारे साथ है। तो जब मैंने ऐसे बोला तो उधर से जिधर से गाड़ी आ रही थी उधर से हम चल पड़े, आगे जाके पुलिस वालों ने रोका, हमने दरवाजा खोल के कहा ओम शांति। अच्छा अच्छा ये तो ओम शांति वाले ना, जाओ जाओ जाओ, बस हो गया काम। तो कहा ना उसके साथ बुद्धि की लाइन हमारी क्लियर है तो दुनिया की सभी लाइन आपके लिए क्लियर ही मिलेंगी, ये निश्चित है। इसलिए समय को देखते हुए बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर रख के चलना बहुत बहुत जरूरी है। तो जहां लाइन क्लियर है तो सही समय पर सही टचिंग लेकर वैसा करने में सफल हो सकेंगे। तो दो अभ्यास तो बताए मैंने है, तीसरा अभ्यास स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर लाइट, इमर्ज कर लो। हम सभी के संपूर्ण स्थिति का प्रतीक है क्या? फरिश्ता स्थिति। तो जो हमें बनना है अंत में है, उस अपने संपन्न स्वरूप को, फरिश्ते रूप को बार बार अपने सामने लाओ कि ये मेरी मंजिल है, मुझे ये बनना है। जैसे ये मेरा स्थूल शरीर है, ऐसे इसी के अंदर भी एक लाइट का शरीर है। तो अनुभव करो कि धीरे धीरे ये शरीर मेरा लाइट का बनता जा रहा है, और बनते बनते सारा शरीर लाइट का बन गया, और इस लाइट के शरीर में मैं चमकता हुआ सितारा आत्मा विराजमान, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट, और मुझे आत्मा से चारों ओर लाइट और माइट की पावरफुल किरणें फैल रही। देखो अपने उस सुंदर डबल लाइट फरिश्ते रूप को, कितना हल्का न्यारा और प्यारा लगता है। अब मैं फरिश्ता उड़ता हुआ जा रहा हूं सूक्ष्म बदन की ओर, और उड़ते उड़ते पहुंच गया हूं सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया में, जहां हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में खड़े हैं। बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि देते देते बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और वरदान दे रहे हैं, बच्चे तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन माया जीत आत्मा हो। अनेकों बार तुम सभी ने माया के सभी विघ्न परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की है और फिर से विजयी बनना है। बाबा ये भी वरदान दे रहे हैं, तुम इस संसार में अवतरित हुए फरिश्ते हो, तुम्हारे द्वारा निकली हुई पवित्रता की किरणों से संसार से विकारों का किचड़ा भस्म हो रहा है, आत्माएं सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हैं ये तीनों अभ्यास, हम अगर रोजाना की दिनचर्या में करके चलते हैं तो आप वह अनुभव करेंगे कि योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लगा रहेगा और स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम बाबा को यूज करें। कहीं भी कोई परिस्थिति समस्या आए तो दिल से बाबा को याद कर बता दो। बाबा ने खुद कहा बच्चे कोई विघ्न परिस्थिति आए यदि तुम दिल से याद कर मुझे कहेंगे प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ मदद करो, तो भगवान तुरंत तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। सुने है ना बाबा के महावाक्य, तो हम उसे यूज करें, प्रयोग करें, उसका आह्वान करें है? बड़ी से बड़ी समस्या वहां हल्की हो जाती है। एक ऐसा ही प्रैक्टिकल का अनुभव, एक जगह कहीं हम सेवा में गए थे तो एक दिन की बट्टी थी, तो बहन जी को पूछा ये कितने भाई बहन होंगे, तो बहन जी ने कहा कि 75 के अंदर ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तो हमने 75 मधुबन की टोली बहन जी को दे दी। बट्टी शुरू हुई, बट्टी पूरे होते होते सुबह हुई, शाम को हुई, और शाम को पूरा होते होते 85-90 के अंदर भाई बहन हो गए, 85-90 के अंदर। लेकिन मुझे इस बात का कुछ मालूम नहीं है, वो बहन जी ने गिनती की है तो उन्होंने और 15-20 टोली के बनाकर रख लिए। लास्ट अनाउंसमेंट किया, भाई सभी भाई बहने टोली लेने के लिए आएंगे, लाइन में आते जा रहे हैं, हम टोली देते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। और जब 7-20 टोली के 7-8 या 20 टोली के बचे हैं और हमने देखा लाइन भाई बहनों की लंबी लग रही है, ज्यादा लग रहे हैं, तो मैंने उस समय मन ही मन बाबा को याद कर कहा दिल से, एक बाबा अब कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, ये मधुबन की टोली कम नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे हमने दिल से याद कर बाबा को कहा। बस भगवान जी के लिए तो कुछ भी करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद भाई बहने आते जा रहे, हम टोली देते जा रहे, आते जा रहे, देते जा रहे, लेकिन मैं फील कर रहा हूं कि वो टोली कम नहीं हो रही है, उसमें से एक एक को टोली देते जा रहे हैं, आते जा रहे, देते जा रहे हैं, लेकिन कम नहीं हो रही है। और उसमें से ही सब को टोली खिला दी और 3 पीस और बच गए। तो लास्ट में वो बहन जी बोलती है, भाई जी आपने तो कमाल कर दिया, 75 में से 85 लोगों को टोली खिला दी और 3 पीस और बचा लिए। इनके कमाल हमारी नहीं, ये ऊपर वाले बाबा की है, वो जादूगर है तो क्या नहीं कर सकता। तो कहीं भी इस तरह से कोई समस्या परिस्थिति आए तो दिल से उसे आह्वान कर लो, उसे अपने मन की दिल की बात उसे याद कर बता दो, तो वहां असंभव भी संभव हो जाएगा और श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति के लिए हम अपने स्वभाव को सरल बनाएं, इजी नेचर हो, सहज भाव से कोई भी समस्या परिस्थिति आए अगर स्वभाव सरल है तो व्यक्ति अपने आप को वैसे परिवर्तन कर लेता है, जैसी समस्या जैसी परिस्थिति वैसे अपने आप को मोल्ड कर लो तो बड़ी से बड़ी समस्या भी वहां हल्की हो जाती है। ऐसा ही एक अनुभव, अभी भी हम जब लंदन में थे तो हमारे साथ जो भाई गए उनको थोड़ा गर्मी ज्यादा लगती थी और मुझे थोड़ा ठंडी लगती थी। अब रहना एक कमरे में ही है, है? तो वो पंखे चलाते थे तो हम रजाई ओढ़ के सो जाते थे, तो एडजस्ट करना पड़े ना, है? तो सब कुछ ठीक हो जाता। और यदि मैं सोचूं कि नहीं है, मेरे को तो नींद नहीं आई, क्या करें कैसे करें, तो रहना मुश्किल होगा उनके साथ। ऐसे कहने का भाव है कि कहीं भी कोई समस्या परिस्थितियां वैसे मोल्ड कर लो। एक जगह और अनुभव याद आया, सेवा पर गए हम तो गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, ठीक कराई तो 2 घंटा लग गए, पहुंचना था रात के 10 बजे, पहुंचे रात के 12 बजे, भोजन किया 12:30 बजे गए। 12:30 बजे बहन जी कहती है भाई जी के घर जाना है सोने के लिए, रहने को यहाँ सेंटर पर जगह कम है। ठीक है जी, भाई के घर गए गाड़ी में बैठ के सोने के लिए। वहां उनकी युगल पहुंच मिली तो बोले लगी भाई जी मेरे को एक प्रश्न पूछना है। ठीक है जी पूछिए। जवाब देते 1 बज गया। अब 1 बजे हम सो रहे हैं रात के और सुबह 3:30 बजे उठ के रेडी होके 4 बजे वहां से निकल के 2 घंटे के बाद जाके एक सेंटर पे क्लास कराना है। ये पहले से प्रोग्राम बना हुआ था, अब गाड़ी तो बीच में खराब हुई ना अचानक, तो हमें 2.5-3 घंटे का ही समय मिला ना रेस्ट के लिए। तो उस समय हमने बाबा को दिल से याद कर कहा बाबा अभी जो समय मिला है उसमें आप हमारी नींद पूरी कर देना, थकावट दूर कर देना, ताकि कल हम अपने भाई बहनों की अच्छी सेवा कर सकें। ऐसे हमने बाबा को याद कर कहा। और चलो ये तो बाबा कर देगा ठीक है, लेकिन उसके बाद उसके पहले वो भाई जो लेके आया तो बड़ा इंजीनियर था कोई, तो उसने एसी चलाई और फुल स्पीड से पंखा चला के और सो गया और खर्राटे मारने लगा। अब मुझे तो ना एसी में नींद आए और पंखे की भी हवा मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चलाते हम और आवाज में तो बिल्कुल नींद नहीं आई। तो अभी क्या करे जी, रेस्ट भी करना है। तो मैंने कमरे से बाहर निकल के देखा, मैंने कहा कहीं और जगह है भाई, तो बाहर बरामदे में एक सोफा पड़ा था। चादर अपने पास रखते ही हम चादर बिछाई और हल्का सा पंखा चला के सोफे पर सो गए, बस हो गया काम। अब मैं ये सोचूं कि नहीं मेरे को तो कमरा ही चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो वहां मुश्किल होगा। इसलिए जैसा समय जैसी परिस्थिति सिचुएशन वैसे हम अपने आप को एडजस्ट कर लें, मोल्ड कर लें, परिवर्तन कर लें, तो वहां सब कुछ ठीक हो जाता है, स्थिति श्रेष्ठ बनी रहती है। तो इस तरह से बातें अनुभव तो बहुत हैं, इस तरह से इन बातों को हम अपने पुरुषार्थ में ऐड कर चले हैं, इनका प्रयोग कर चलें, तो आप अपनी स्थिति को सदैव एक रस बनाकर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, रुड़ाते रहेंगे। और जहां स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, कैसी परिस्थिति आए, लेकिन स्थिति को नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि स्थिति सबसे बड़ा खजाना है। बहुत समय के अभ्यास के पुरुषार्थ के बाद जाकर कहीं श्रेष्ठ स्थिति बनती है। और कई भाई बहने छोटी छोटी बातों में, इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों कहा, ये ऐसे क्यों करते हैं, मैंने काम नहीं किया फिर भी मेरे पे झूठा आरोप क्यों लगाया जा रहा है, ये सब बातें आएंगी। ऐसे नहीं हो रहा, जो कुछ हो रहा है व्यक्ति के कर्मों के हिसाब किताब अनुसार ही हो रहा है। कहने में तो हम दूसरों को दोष दे देते हैं, लेकिन हम सदैव अपने कर्मों के हिसाब किताब को समझें। और जिन्होंने ये कर्मों के गुहे गति के ज्ञान को समझ लिया, जान लिया, वो कभी परेशान नहीं होंगे। एक और अनुभव छोटा सा, अभी टाइम तो हो गया है, चलो पूरा करते हैं। तो इन कुछ एक बातों को आधार बना के चलें तो श्रेष्ठ स्थिति बनाकर सदैव आगे बढ़ते रहेंगे, यही हमारी शुभ भावना शुभकामना है। ओम शांति।